జయ బ్రజ జనరంజన జయ హో జయ యమునా తీరా బన చారి జయ కుంజ బిహారి జయ యమునా తీరా బన చారి జయ కుంజ బిహారి రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారి జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారి नितय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा జయ ఓం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తర సశ్రీ శ్రీమద్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ నిత్యలీలా ప్రవిష్ట ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య సేవియర్ ఆఫ్ ది హోల్ వరల్డ్ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకుర్ కీ జయ ప్రేమ్ సి కహో శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్తవృంద కీ జయ శ్రీ శ్రీ రుక్మిణీ ద్వారకాధీశ లలితా విశాఖ గోప గోపికా శ్యామ కుండ రాధా కుండ గిరి గోవర్ధన్ కీ జయ శ్రీ శ్రీ గౌనితాయ కీ జయ శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ సుభద్ర బలదేవి కీ జయ సమవేద భక్తవృంద కీ జయ అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద కీ జయ ఇస్కాన్ వర్తమాన ఆచార్య వృంద కీ జయ శ్రీ చందన యాత్రా మహామహోత్సవ కీ జయ శ్రీమతి తులసి శాలిగ్రామ జలదాన మహామహోత్సవ కీ జయ గౌర్ ప్రేమానంది ఆల్ గ్లోరీస్ టు సిమెన్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు సిమెన్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు సిమెన్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీ టు శ్రీ గురు అండ్ గౌరాంగ तो श्वेत पट में जो प्यार संख्या लिखी है आप लोग देख रहे हैं जो प्यार संख्या लिखी है 104 से होना चाहिए मुझे बताया था कि 104 से 116 तक जिसमें प्यार संख्या लिखना चाहिए 104 से 116 तक है ना तो मैं 104 से पढ़ करके फिर 116 में फिर पहुंचेंगे तब पाठ करेंगे एक साथ है ना इसको बंद कर दिए इसको बंद कर सकते हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद శ్రీ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద గ్రంథరాజ శ్రీ చైతన్య చరితామృత ఆది లీలా అధ్యాయ 2 ప్యార్ సంఖ్య 104 సే లేకర్ 116 తక్ తో 104వీ ప్యార్ హై हिमत स्वरूप गण आरती न शक्ति सभार आश्रय कृष्ण कृष्ण सभार स्थिति। ये भगवान के मुख्य स्वरूप विस्तार और उनकी तीन शक्तियां हैं, ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट हैं, ये सब उन्हीं में स्थित हैं। ये जो अध्याय है ये चल रहा है, इसका जो विषय है ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ के जो 14 श्लोक हैं उनमें से श्लोक संख्या 3 की व्याख्या इस अध्याय में हुई है, और श्लोक संख्या 3 में ये बताया गया है कि जो श्री कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम है तो वही चैतन्य महाप्रभु, तो इस बात की व्याख्या की गई है इसमें, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। ये 104 संख्या की जो प्यार है इसमें बताया गया है कि एमत स्वरूप गण आर तीन शक्ति, तो भगवान कृष्ण के बहुत से स्वरूप विस्तार हैं जिनको कहते हैं स्वांश विस्तार, तो भगवान कृष्ण के बहुत से स्वांश विस्तार हैं और तीन शक्तियां हैं। तीन शक्तियां तो जो पहले बता चुके हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, तो तीन शक्तियां हैं और अन्य स्वरूप हैं, स्वरूप विस्तार हैं। तो ये सब किन से निकल रहे हैं, परम पूर्ण श्री कृष्ण से ही प्रकट हो रहे हैं तीनों शक्तियां और सभी विस्तार, है ना। जो जीव तत्व है ये शक्ति के अंदर भी आ जाता है, है ना, अंश भी माना जाता है और शक्ति भी माना जाता है। तो तीन शक्तियों में तटस्थ शक्ति जीव है। प्यार संख्या 105 है। यद्यपि ब्रह्मांड गण पुरुष आश्रय से पुरुष आदि सभार कृष्ण मूल आश्रय, यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। तीन पुरुष का मतलब क्या है, तीन पुरुष अवतार, है ना, तो तीन पुरुष अवतारों से ही ये संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। संपूर्ण ब्रह्मांडों के आश्रय तीन पुरुष अवतार हैं। तीन पुरुष अवतार में सबसे पहले करुणदक्ष साई विष्णु, दूसरे गर्भोदक्ष साई विष्णु और तीसरे क्षीरोदक्ष साई विष्णु, है ना। हाँ, तो कृष्ण ही इन सब के मूल आश्रय हैं। तीनों पुरुष अवतारों के मूल आश्रय कृष्ण हैं। प्यार संख्या 106। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्री कोय, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों के उद्गम हैं। सारे प्रामाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। अब ये श्लोक है 107वीं संख्या में। ईश्वर परमहा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अनुवाद है, गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता हैं, उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है, वे सबके उद्गम हैं, उनका कोई उद्गम नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। तात्पर्य प्रभुपाद ने कुछ शब्द लिखे हैं, ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। अब प्यार संख्या 108 है। ये समय सिद्धांत तुम्हें जान भाले मते तब पूर्व पक्ष कर आमा चलाई ते, अनुवाद है, आप शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भरी भांति जानते हैं किंतु मुझे क्षुब्ध करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते हैं। इसको समझना पड़ेगा ना, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से सुनिए। ये जो कक्षा है ये खाली बैठने के लिए नहीं, सुनने के लिए है, सुनने के लिए समझने के लिए है। इसमें कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं, आप शास्त्रों के सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते हैं किंतु मुझे क्षुब्ध करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते हैं। आप कौन, आप आप जानते हैं शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को आप जानते हैं, फिर भी मुझे क्षुब्ध करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। इसमें जो शब्द है वो क्या है, तबु पूर्व पक्ष कर आमा चलाई थे, फिर भी आप जानते हुए भी पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करके मुझे चला रहे हो, मुझे चला रहे हो, है ना। ये तरीका है शास्त्रार्थ करने का, ये तरीका है कृष्णदास कविराज का, जो तरीका है शास्त्रार्थ करने का, ये बहुत विनम्रता का है। आप समझ रहे, यानी कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं, विष्णु भी नारायण भी उनके ही अंश विस्तार हैं, है? इस बात को उन्होंने स्थापित किया है कृष्णदास कविराज ने, और इसमें अपनी कोई योग्यता नहीं मान रहे हैं। कृष्णदास कविराज का जो तरीका है सिद्धांत प्रस्तुत करने का, ये बहुत विनम्रता का है। आप समझ रहे हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति जो है जब किसी सिद्धांत को स्थापित करता है तो अपनी विद्वत्ता दिखाता है कि मैंने सिद्धांत स्थापित किया है और मेरा देखो मेरा ये प्रभाव है, है ना। लेकिन वे क्या कह रहे हैं कि आप शास्त्रों के सारे सिद्धांतों को अच्छी प्रकार जानते हो, आप जानते हो, मतलब ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कृष्ण को मानता है कि विष्णु से आए हैं। बहुत लोग जो है यही मानते हैं ना कि विष्णु के ही अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं विष्णु से आए, कृष्ण भी विष्णु से आए, है ना। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो जानते नहीं हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज ने ये सब जो शास्त्रों में उद्धरण है ये पेश कर दिए समझाने के लिए, पेश कर दिए शास्त्रों के उद्धरण पेश कर दिए, और आप क्या बात बोल रहे हैं, आप इस अच्छी प्रकार जानते हो, है ना। जो नहीं जानता उसको भी कहते हैं आप जानते हो, इस तरह से कि आप जानते हो, इस तरह से कहकर के उन्होंने अपना जो गुण है वो मिटा दिया कि मैंने आपको बताया, आप पहले से जानते हो, नहीं कह रहे, तो फिर मुझे चलाने के लिए आप पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व पक्ष का मतलब होता है कुछ विपरीत बात जो है प्रस्तुत करके फिर मतलब आप उसको जो है सामने लाते हैं। पूर्व पक्ष का मतलब होता है कि कुछ उल्टा निष्कर्ष आप जो है निकाल करके आप जो है किसी की परीक्षा लेना चाहते हैं कि बोलो आपका क्या विचार है, आप इसका खंडन करिए, उसको पूर्व पक्ष बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, पूर्व पक्ष का मतलब है कि आप कभी जो है मतलब किसी बात को किसी की परीक्षा लेने के लिए तो आप पूर्व पक्ष उठाते हैं, तो जो वास्तविक सिद्धांत है उसके विपरीत आप कोई सिद्धांत आप प्रस्तुत करते हैं कि अब बताओ इसको और इसको जो है खंडन करो, मैंने तो ये उठाया, है ना। तो कृष्णदास कविराज किस तरह से उस व्यक्ति को समझाना चाहते हैं जो नहीं समझता है, नहीं समझता है उसको भी क्या समझा रहे हैं। उन्होंने सब शास्त्रों में उद्धरण दे दिए कि कृष्ण से ही विष्णु आते हैं, जितने अवतार कृष्ण से आते हैं, है ना, कृष्ण ही विष्णु के कारण है, है ना। लेकिन ये कह करके फिर जो है अपना कोई गुण नहीं दिखाना चाहते हैं कृष्णदास कविराज, अपनी योग्यता नहीं दिखाना चाहते हैं। जबकि सामान्यता क्या होता है, कोई विद्वान अपनी योग्यता दिखाता है कि ये मैंने स्थापित किया, ये मेरा मत है, ये मेरा सिद्धांत है, मैं आचार्य हूँ, मैं बड़ा आचार्य हूँ। तो कृष्णदास कविराज ये नहीं चाहते ना, तो वो क्या कहते हैं कि मैं तो बहुत निम्न स्तर का हूँ और आप ऊंचे स्तर के हैं और आप सब जानते हैं, हैं? फिर पूर्व पक्ष उठा करके मुझे क्यों चला रहे हैं। ये तरीका मतलब कितना अच्छा तरीका है, जिसे अपने अंदर अभिमान नहीं आएगा ना, कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, फिर ऐसी बात बोल करके आप मुझे क्यों चला रहे हैं। अच्छा तरीका है ना, फिर ये नहीं होता कि मैंने देखो तुमको पराजित किया है, देखो मेरी योग्यता, मैंने तुम्हें परास्त किया, शास्त्रार्थ मैंने तुम्हें परास्त किया, नहीं। कृष्णदास कविराज ऐसे बोल रहे हैं। है ना, क्या कह रहे हैं, ये सब सिद्धांत तुम्हें जान भाल मते, ये सब सिद्धांत आप तो अच्छी प्रकार जानते हैं, आप नहीं जानते कुछ भी, कृष्णदास कबीरदास जी बता रहे हैं आपको, लेकिन क्या कह दिया, आप ये सब सिद्धांत अच्छी प्रकार जानते हैं। तबु पूर्व पक्ष कर आमा चलाई थे, फिर पूर्व पक्ष प्रस्तुत करके मुझे चला रहे हैं, है ना, ये तरीका है, है ना। तो वे जो है बहुत बड़े मतलब वो आचार्य नहीं बनना चाहते हैं, है ना, इस तरह से। आप तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जिस विद्वान ने शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया है, सुन रहे प्रभुपाद कह रहे हैं, जिस विद्वान ने शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया है वो श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करने में संकोच नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस विषय पर तर्क करता है तो समझना चाहिए कि वो अपने प्रतिपक्षियों के मनों को विक्षुब्ध करने के लिए ही ऐसा कर रहा है। तो प्रभुपाद कृष्णदास कविराज की बात को ही समझा रहे हैं, कृष्णदास कविराज का जो भाव है वो कितना विनम्रता का है, कितना विनम्रता का है ना। ऐसे हरिदास ठाकुर भी है ना, जब किसी ढोंगी ब्राह्मण ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि तुम हरि नाम का उच्चारण जोर जोर से क्यों करते हो, ये अपराध होता है, तो हरिदास ठाकुर ने भी कहा, आप ब्राह्मण लोग हैं, आप सब जानते हैं शास्त्रों को, आपकी कृपा से ही मैं कुछ जानता हूँ। और उन्होंने फिर इस पक्ष में शास्त्रों के उद्धरण दिए कि हरि नाम जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए, तो कैसे कि आपकी कृपा से ही मैं कुछ जानता हूँ शास्त्रों को और मैं बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं अच्छी प्रकार से। हरिदास ठाकुर भी इतने विनम्र थे, उसके बाद भी उसने हरिदास ठाकुर के ऊपर और विनम्रता की कि तुम आप जो है शास्त्रों की व्याख्या भी करने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, और ये जो है नीच व्यक्ति शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, ये कलयुग का लक्षण है। तो फिर उसका जो है फिर भगवान ने कर दिया हिसाब, उसकी नाक जो है करके गल के गिर गई, है ना। तो इसके बाद भी जो है वो हरिदास ठाकुर ने तो उसको पूरा सम्मान दिया और अपने को जो है बिल्कुल अयोग्य मान करके और उसको बताया, और आप ये भी कहा कि आप ही जानते हैं सब, आपकी कृपा से मैं जानता हूँ, इतना उसको सम्मान दिया। और फिर भी उसने जो है मतलब उनकी और भी निंदा की और बहुत कठोर शब्दों में निंदा की, है ना। तो फिर भगवान ने फिर एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया भगवान ने। आगे प्यार संख्या 109 है, श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूप कैले अवतार। वे भगवान श्री कृष्ण ही ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के स्रोत हैं, वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो वे ही अवतारी हैं और ब्रजेंद्र कुमार हैं, ब्रजेंद्र ब्रज के राजा यानी नंद महाराज के पुत्र हैं, है ना। देखो पुत्र के रूप में रहते हैं वे, एक पुत्र के रूप में रहते हैं, जबकि सब अवतारों के अवतारी हैं, है ना। और वही उन्होंने चैतन्य रूप में अवतार धारण किया है, है ना। अत प्यार संख्या 110 है, अत एव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा तारे छिरो देसाई कई की तारे महिमा। अतएव अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं, उन्हें क्षीरोदशाई विष्णु कहकर पुकारने में उनकी महिमा नहीं बढ़ती है। अगर चैतन्य महाप्रभु कहें कि क्षीर क्षीरोदशाई विष्णु हैं जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उनकी महिमा नहीं बढ़ती है, है ना। सही सही त भक्त रे वाक्य नहे व्यभिचारी सकल संभाव्यता ते जाते अवतारी। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। अब देखो कितना अच्छा ये जो है विषय है, कृष्णदास कविराज समझा रहे हैं। एक तो ये कहा कि अगर कहा चैतन्य महाप्रभु क्षीरोदशाई विष्णु के अवतार हैं तो उनकी महिमा नहीं बढ़ रही है, तो फिर क्या ना कहें, प्रश्नता क्या ना कहें, है ना। तो फिर कहते हैं किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते, उनमें सारी संभावनाएं निहित हैं क्योंकि वे आदि भगवान हैं। तो कोई अगर ऐसा कहता है तो ऐसा भी सत्य है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नंद महाराज के पुत्र रूप में इतने विनम्र हैं कि नंद महाराज के पुत्र कहलाने में भी कोई ये नहीं लगता कि भाई क्यों कह दिया नंद महाराज के पुत्र, सब अवतारों के अवतारी और नंद महाराज के पुत्र कह दिया, नंद महाराज तो कुछ भी नहीं जानते तो ऐसा कहने में भी अगर कोई है उनका दोष किसी को दोष नहीं लगता है बल्कि वो प्रसन्न होते हैं है? तो कोई व्यक्ति अगर प्रेम से उनको क्षीर सागर के विष्णु कहता है तो कोई दोष नहीं लगता, उसकी भावना उसकी श्रद्धा को भगवान स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। नंद पुत्र नंद तनुज कहने में भी कोई दोष नहीं लगता, वो उसमें भी प्रसन्न होते हैं है? अर्जुन के सारथी कहने पर भी उनको जो है प्रसन्नता होती है ना। तो अगर उनको कहें कि क्षीर सागर के विष्णु हैं तो क्या कुछ दोष लगेगा, निष्ठावान है ना। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज, तैसे ही था भक्ति रे वाक्य नहीं व्यभिचारी सकल असंभव जाते अवतारी। प्यार संख्या 112 है, अवतारी हृदय सम अवतारी स्थिति के को न मत कहे जी मन जा रे मती। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं, अतः अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। सभी अवतार उनके शरीर में है ना, और वो किसी को किसी भी अवतार का दर्शन करा सकते हैं है ना। उस समय वो जो है उसी अवतार के रूप में देखेगा और पूरी पूरी जो भावना है उस चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो उसी अवतार की कर सकता है। तो कुछ भी उसमें ये नहीं कि इसके अलावा कुछ और हैं, नहीं है। राम के भक्त हैं वो जो है, उनको अगर राम के रूप में अगर देखता है तो पूरा पूरा जो है भाव उसका राम का ही रहता है और कुछ भी नहीं जानता वो राम के अलावा, और वो है और उसी प्रकार से वो व्यवहार करेंगे, कुछ भी मतलब अन्यथा नहीं है, है? कि नहीं नहीं तुम कुछ और भी जान समझो, केवल इतनी थोड़ी है कि वे केवल राम ही हैं, है ना। नहीं, भक्ति जो है अपनी भावना है कि वे राम ही हैं, है? वे नरसिंह हैं, है ना। तो उसकी संपूर्ण भावना अपनी जो है वो नरसिंह की करके भी वो चैतन्य महाप्रभु को मान सकता है, तो उसमें कुछ भी दोष नहीं, भगवान स्वीकार करेंगे उसके उसी भाव को स्वीकार करते हैं, है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त द्वारा भगवान को उनके पूर्ण विस्तारों के विविध नामों में से किसी एक नाम से संबोधित किया जाना विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं, जबकि है विरोधाभास लग रहा है, कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मूल भगवान में ये सारे विस्तार सन्निहित रहते हैं, क्योंकि सारे पूर्ण विस्तार आदि पुरुष में अवस्थित रहते हैं, अतः इन नामों में से किसी एक नाम द्वारा पुकारे जा सकते हैं। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 6:95 में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था किंतु नाढ़ा की पुकार ने मुझे जगाया, नाढ़ा की पुकार से मेरी निद्रा भंग हुई, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं। तो जिन भक्तों के बीच में अपना परिचय दे रहे हैं है ना, तो जितना समझ सकते हैं उतना ही बता रहे हैं कि मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, नाढ़ा की पुकार से मेरी निद्रा भंग हो गई। नाढ़ा की पुकार से जो है मुझे आना पड़ा, मुझे विवश होना पड़ा आने के लिए। तो आगे रूप लिखते हैं, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने क्षीरोदक साई विष्णु रूप का उल्लेख कर रहे हैं, है ना। प्यार संख्या 113, कृष्ण के कहा एक है नारे नारायण के वो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण है, अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन है, वामन देव। तो कुछ भी विरोधाभास नहीं है। 114 प्यार संख्या, के हो कहे कृष्ण क्षीरोत्साही अवतार है असंभव न है सत्य वचन ऐसा बार है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार हैं, इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है, प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, लघु भागवतामृत 5:383 में आया है। अब इतने तात्पर्य मैं पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है कि नहीं तो उसी पर ही क्लास दिया जाता था, पूरा तो मुझे कहा गया है कि मैं प्यार संख्या 116 में पहुंचूं, इसलिए तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, लघु भागवतामृत 5:383 में आया है कि अते पुराणादो केचन नरसखात्मताम महेन्द्रानुजताम केचन केचन क्षीराभिषायिताम सहस्र शीर्षताम केचन केचन वैकुंठनाथताम ब्रूयो कृष्णस्य मुनयस् तन् तत्तन्वृत्यनुगामिनः। आदि भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध के अनुसार सारे पुराण उनका विविध नामों से वर्णन करते हैं। कभी वे नारायण कहे जाते हैं, कभी उपेंद्र यानी वामन, स्वर्ग के राजा इंद्र के छोटे भाई कहे जाते हैं। उपेंद्र का मतलब इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र है ना, जैसे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष होता है, इंद्र के नीचे उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र कहे जाते हैं। इंद्र कुछ भी नहीं, तिनका भी नहीं उनके सामने, तो भी उनको उपेंद्र भी कहा जाता है, तो भी उसको भी स्वीकार करते हैं, है ना। तो कभी शिरोधक साहिब विष्णु कहे जाते हैं, कभी वे सहस्त्र फंड वाले शेष नाग कहलाते हैं। यहाँ पर सहस्त्र शीर्षताम लिखा है ना, हजार सिर वाले, तो हजार सिर वाले शेष नाग तो है ही हैं, लेकिन हजार सिर वाले एक परम पुरुष भी हैं जिनके हजार सिर हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों चरण हैं, ये वो भी रूप है भगवान का। तो वो भी जो है उनको ऐसा भी कहा जाता है, हजार सिर वाले हैं। सुनाई थी, अच्छा। तो कभी वैकुंठपति कहे जाते हैं, वैकुंठ नाथ ताम। अब प्यार संख्या 115 है, केहो कहे पर अव्यो में नारायण हरि सकल संभव कृष्ण जाते अवतारी। कुछ उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अब प्यार संख्या 116 मेरे पीछे बोलिए, बोले सब लोग तैयार हैं। सब श्रोता गणेर करे चरण बंदन, ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन, सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन, सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन। बोलिए,
सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, सब सिद्धांत सुन करी एक मन,
सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन,
और वैष्णो देवी शब्दार्थ पढ़ने से पहले मैं एक बात पर विचार करना चाहता हूँ कि जो मैंने या कुछ भक्तों ने पढ़ा बंधन है और कुछ भक्तों ने पढ़ा बंधन, तो इसमें अंतर है। बंधन तब पढ़ते हैं जब नाम में हलंत हो, आधा ना हो, बंधन है, और जिन्होंने पढ़ा बंधन है तो इसमें पूरा ना है ना, मन, आपने पढ़ा मन है और मन है, तो इसमें अंतर है। हालांकि दोनों तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि मतलब वैसे पाठ अगर देखा जाए तो इस तरह का ही है, वंदन है मन है ना, वंदन मन है ना, तो अंतर है, अंतर है। शब्दार्थ बड़ी सब सब श्रोता गणेर, श्रोता गण का करी मैं करता हूँ, चरण चरण कमल में वंदन प्रार्थना, ए ये सब सब सिद्धांत सिद्धांत निष्कर्ष सुन, कृपया सुनो करी करके एक एक मन मन। अनुवाद मेरी पीछे बोलिए, मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे, बहुत सरल शब्द हैं। सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, किनसे कह रहे हैं, श्रोता गण से। यहाँ पर है कोई श्रोता गण, हाथ उठाइए। कृष्णदास कविराज इन सब श्रोता गणों के चरणों की वंदना कर रहे हैं, हैं? ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन, ये सब सिद्धांत एक मन कर एकाग्र मन से सुनिए, एकाग्र मन से सुनिए, सिद्धांत सिद्धांत ये सब सिद्धांत एकाग्र मन से सुनिए, है ना। क्योंकि कई भक्त लोग क्या सोचते हैं, ये सब बातों की कोई जरूरत नहीं है, हम तो सीधे रासलीला में जाएंगे, ब्रज लीला में जाएंगे, कृष्ण की लीला में जाएंगे, उसमें रस है, हैं? ये सब जो है सिद्धांत की क्या जरूरत है ना। लेकिन कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों की वंदना करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग एकाग्र मन से सुनिए इन बातों को, है ना। क्योंकि कृष्णदास कविराज ने इतना मतलब शक्ति लगाई है इन सब इस सिद्धांत को स्थापित करने में कि कृष्ण का जो तत्व है वो क्या है। तो कृष्ण के तत्व की चर्चा में जो है इतनी शक्ति लगाई है, इतना परिश्रम किया है, और वे सब श्रोताओं के चरणों की वंदना करके प्रार्थना कर रहे हैं कि इन विषय को एक काग्र मन से सुनिए। इससे लाभ क्या है, क्या कृष्णदास कविराज का कोई लाभ है, नहीं। अगले प्रयार में कहेंगे इहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, इस प्रकार से जो कृष्ण के चरणों में आपका मन सुदृढ़ हो जाएगा, अच्छी प्रकार से कृष्ण के चरणों में आपका मन सुदृढ़ हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आलस नहीं करना, वो अगली प्यार में वो कहते हैं, है ना। तो इसमें उनका कुछ लाभ नहीं है, है ना। लेकिन जो सहजियाँ हैं, प्राकृत सहजियाँ हैं, हैं वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, ना ना ये सब नहीं सुनना चाहते, सीधे गोपी भाव, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब इससे क्या होता है, जितना सस्ता आप समझते हैं कृष्ण को, फिर उतना ही जो है वो कठिन है, दुर्लभ है, महंगे है, है ना। तो इसलिए हमें जो है कृष्ण प्रेम को इतना सस्ता नहीं माना चाहिए, कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त करना है तो हमें बहुत विधि पूर्वक सेवा करना है, प्रश्न करना है, प्रणाम करना है, इस तरह से हमें करना है, है ना। और अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, और प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, विचार नहीं करना चाहते हैं, मंथन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर जैसे आसानी से भक्त बने वैसे आसानी से माया में भी चले जाएंगे, बड़ी जल्दी भक्त भी बन जाते हैं और बड़ी जल्दी गिर जाते हैं, कुछ भी मतलब वो होता नहीं है, स्थायी लाभ होता नहीं है, है ना। लेकिन आप जो है जितना अधिक कृष्ण के तत्व को महत्व देंगे, इस चर्चा को महत्व देंगे, सिद्धांत को महत्व देंगे, है ना, तो उतना जो है आप की नींव मजबूत होगी। इसलिए प्रभुपाद जो है नींव को मजबूत करने के लिए बहुत मतलब हमेशा प्रवचन में सिद्धांत की बात करते हैं, जिससे नींव मजबूत हो, है ना। और ये सवेरे शाम की जो कक्षाएं हैं ये सब जो है नींव को मजबूत करने के लिए होती है, है ना। ये ऐसे नहीं, ये तो जो है ना हमने सुन लिया, अब जो है कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, ये तो सब जो है बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। हमारे तो कान पक गए प्रभु जी, ये सब सुनते सुनते हमारे कान पक गए। हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, है ना। क्या है, वही वही बातें दोहराते हो, है कुछ आगे की बातें बताओ। तो प्रभुपाद श्री शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद हम जो है इन बातों को तो समझ गए, अब कुछ आगे की बातें बताओ। प्रभुपाद कहे तुम कुछ भी नहीं समझे, है ना, तुम कुछ भी नहीं समझे, है ना। तो इसलिए नींव को मजबूत करने के लिए सिद्धांत और जो है जो विषय है उसको गहराई से समझना चाहिए, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक अपने पाठकों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से अनुरोध करते हैं कि परम सत्य विषय इस इन निष्कर्षों को मनोयोग से सुने। ऐसे तर्कों को सुनने से किसी को चूकना नहीं चाहिए। हरि बोल। आंखें बंद हो रही हैं अभी, अब आंखें बंद हो रही हैं, ठीक से विश्राम नहीं किया इसलिए आंखें बंद हो रही हैं। ऐसे निष्कर्षों को प्रभुपाद क्या कहते हैं, ऐसे तर्कों को सुनने से किसी को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्ञान से ही मनुष्य कृष्ण को पूरी तरह जान सकता है, है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, हाँ। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो हम इसको बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, है ना। और प्रभुपाद ने जो है इतनी अच्छी इसकी जो है नींव बनाई है, ये कृष्ण भावनृत आंदोलन की इतनी बढ़िया नींव बनाई है, है ना। जैसे कि खूब मकान को बनाने के पहले नीचे खुदाई करते हैं और नीचे खुदाई करते हैं, खूब नींव को मजबूत बनाते हैं, है ना, है ना। अब कोई कहे कि भैया मकान तो ऊपर बनानी है, नीचे क्या निर्माण कर रहे हो, नीचे निर्माण कार्य की क्या जरूरत है, ऊपर का निर्माण कार्य करो। तो ऊपर का निर्माण कार्य करते हैं, नीचे का निर्माण कार्य कुछ नहीं करते, और क्या होता है, सब ध्वस्त हो जाता है। प्रभुपाद ने जो है बहुत नीचे से खूब खुदाई कर करके जो है नींव मजबूत की है कि हम ये शरीर नहीं है, है ना, है ना, अगला जीवन है। इसी पर जो है कितने प्रभुपाद ने प्रवचन दिए हैं और जो है वार्तालाप किए हैं, उनके संवाद हैं, है? उनकी चर्चा है, उनकी गोष्ठी है, उनके विचार है, सब है, मतलब इतना करते हैं, है ना। और इसी विषय में कहीं भी किसी भी श्लोक में अगर ये बात आ जाती है कि शरीर और जो है जो जीवात्मा है तो उसमें अंतर का कहीं भी अगर आता है तो मैंने देखा है कि प्रभुपाद तात्पर्य जोर देते हैं अपने उस श्लोक पर, तात्पर्य प्रभुपाद जोर देते हैं, है ना, कभी चूकते नहीं कि ये तो इतना इतना उन्होंने लिख दिया है, है? गीता के एक एक श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं एक एक श्लोक में, जबकि उसमें वही बातें हैं, है? कि शरीर जो है नश्वर है और जीवात्मा अविनाशी है, है ना। भाई हमने तो जान लिया, हो गया, हमने जान लिया, है ना। तो कृष्ण बार बार इसी बात को क्यों दोहरा रहे हैं, फिर प्रभुपाद क्यों बार बार और लंबे लंबे तात्पर्य दे रहे हैं, क्या जरूरत है, इतनी तो सरल बात है। जितनी सरल आप समझते हैं उतना ही ये निकलने वाला है, निकल जाएगा, टिकेगा नहीं आपके दिमाग में। जितनी सरलता से आप समझ लेते हैं उतनी सरलता से दिमाग से निकल भी जाता है, कुछ भी नहीं बैठता, है ना। इसलिए इसको जो है खूब खुदाई करके, खूब खुदाई कर करके उसको भरते हैं प्रभुपाद, और अच्छी तरह से भरते हैं, है ना। और सुनो सुनो सुनो, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्णदास कविराज तो ऐसे कहते हैं कि चरणों में नमस्कार, उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी हैं, चरणों में नमस्कार करके कहते हैं, है? लेकिन प्रभुपाद डांट डांट के बोलते हैं, प्रभुपाद डांट मध्यम अधिकारी के धरातल पर प्रभुपाद जो डांट डांट करके बोलते हैं, कि क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं बैठते क्लास में, है ना। तो ये जो विषय है इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जितना सुनते हैं तो आपका जो है मन है वो जो है फिर पक्का हो जाएगा, मन को पक्का करने के लिए ये होता है। जैसे किसी कपड़े में जो है रंग चढ़ाया जाता है, हैं, तो कई बार ऐसे रंग चढ़ाते हैं और निकल भी जाता है, तो उसमें नमक मिलाते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर और गर्म करते हैं, फिर चढ़ाते हैं, फिर चढ़ाते हैं, कितनी उसकी जो है विधि होती है। तो ऐसा पक्का रंग होता है कि चाहे फट जाए और चाहे तुम उसको 1000 बार धो, रंग नहीं उतरेगा उसका, है ना। फिर वो रंग नहीं उठेगा, है ना। तो फिर चाहे आपकी श्वास निकल जाए लेकिन आपका दिमाग में जो है वो नहीं निकलेगी बात, श्वास छोड़ते छोड़ते भी ये बात नहीं निकलेगी दिमाग में, है ना। तो ये है ना, तो कृष्ण भावना में संघ जो है इस सिद्धांत पर ही जो है टिका हुआ है और सुरक्षित है और मजबूत है, इस सिद्धांत पर मजबूत है। हम ये शरीर नहीं है और इस तरह से हम जो है फिर एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। फिर हमारी ये चेतना नहीं रहेगी कि मैं भारतीय हूँ और ये विदेशी है, ये अंग्रेज है, ये वो है, ये है ना, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, है ना। तो प्रभुपाद ने इतना अच्छा मतलब ये कर दिया है, एक माहौल बना दिया है कि हर समय यही चर्चा होती है, हर समय यही चर्चा होती है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बंगाली बिहारी सब जो चेतना है ये नहीं रहती, लेकिन जो लोग नई क्लास में बैठते हैं तो फिर उनकी चेतना में रहता है आमी बंगाली, आमी बंगाली, आमी बंगाली, ना। तो फिर वो जो चेतना है ये नहीं जाएगी, इसे तो नहीं जाएगी है। तो चाहे डीटी वर्शिप करें है, कोई जो है मतलब पूजा करें हाँ, तो पूजा में भी जो है क्या है कि अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो बहुत खतरा है, और ये चेतना जो है वो शारीरिक चेतना में वो बने रहेंगे ना। इसलिए प्रत्येक भक्त के लिए जिनकी सेवा भी होती है हाँ, कि भाई क्लास के समय वो नहीं हाँ बैठ सकते, उनकी कुछ सेवा है तो उनके लिए अलग से कुछ क्लास का समय निश्चित किया जाए, लेकिन होना चाहिए, है ना। बम्बई मंदिर में जो सिद्धार्थ महाराज पहले हेड पुजारी थे तो वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने बताया था कि वो हेड पुजारी थे हाँ, तो उन्होंने जो है पक्का नियम बनाया था कि शाम को जो है वो गीता क्लास जो है मैं पुजारियों को बिठाते थे, सब पुजारियों को बिठाते थे और उनका भी समय निश्चित करते थे कि वो क्लास दें, क्लास दें, क्लास सुनें, तो पुजारियों को भी जो है बैठना है और सुनना है क्लास। तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि भाई चल जाएगा, हम कोई भी सेवा करें है? सब दिव्य है, क्योंकि ये जो सुनना है, ये सुनना है नष्ट प्राय सुभद्रेशु, नष्ट प्राय सुभद्रेशु, हमारे अंदर अभद्र भरे हुए हैं बहुत से, कमजोरियां बहुत सी हैं हमारे अंदर, है ना। तो उनको हम जो है दबा करके है? और हम उसके ऊपर बहुत से गुण हम गुणों का अभ्यास करते हैं, लेकिन उन कमजोरियों को, उन दोषों को हम नहीं निकालते हैं, है ना। तो वे जो कमजोरियां और वे जो दोष हैं ये उन सब गुणों को नष्ट कर देंगे और गिरा देंगे। जैसे कि नींव आपने अच्छी तरह मजबूत नहीं की, नींव बनाई और खूब बढ़िया मकान बनाया है? तो इतना गुण आपने जो है मतलब आपका है, कितना बढ़िया मकान बनाया और 10 करोड़ 100 करोड़ का मकान बनाया और नींव नहीं बनाई, है ना। तो सब गुण आपका नष्ट हो गया क्योंकि आपने वो कमजोरी और अपना जो दोष है वो तो आपने निकाला नहीं। तो वो आंतरिक जो शुद्धि है वो बहुत आवश्यक है कि हम इस शरीर की चेतना से ऊपर उठें, हम इस शरीर नहीं हैं। तो कोई व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति से नफरत करता है, ये बूढ़ा है, वो किसी को कुरूप से नफरत करता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में, कुरूप है हाँ, या कोई मतलब मैं इस प्रांत का हूँ तुम उस प्रांत के हो, मैं इस देश का उस देश के हो हाँ, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है तो नफरत है, और कई तरह से अपने राग द्वेष के जो विचार हैं वो बने हुए हैं और राग द्वेष बना हुआ है ना, और उसी राग द्वेष के आधार पर वो कृष्ण की भक्ति भी कर रहा है। वो कृष्ण की भक्ति वो राग द्वेष के अनुसार हो रही है उसकी, क्योंकि वो राग द्वेष से ऊपर उठ नहीं रहा है। और जब राग द्वेष से हम ऊपर उठें है ना, तब तो कहीं हमारी मतलब निष्ठा में आएंगे हम, तो भजन क्रिया से हमारे अनर्थ दूर होंगे, तब कहीं निष्ठा आएगी, जिसको कहते हैं सुदृढ़ मानस निष्ठा। तो निष्ठा का धरातल नहीं आ सकता, निष्ठा के धरातल पर आप नहीं आ सकते अगर आप जो है रजोगुण से ऊपर नहीं उठते हैं। रजोगुण रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समद्भवम, तो उस राग द्वेष के धरातल पर आप कृष्ण की खूब पूजा कर रहे हैं या खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब अपना भाव दिखा रहे हैं, भला भाव दिखा रहे हैं ना, लेकिन वो जो भाव है वो भावुकता है, वो भाव तो है नहीं, भाव तो बहुत दूर है, अभी तो आप निष्ठा में भी नहीं आए, वो तो भावुकता है, सेंटीमेंटल है ना। तो इस तरह से जो है कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रभुपाद ने या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने या भक्ति ठाकुर ने सहजिया लोगों की निंदा की है, सहजिया लोगों ने निंदा की कि कृष्ण प्रेम जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है। सहजिया का मतलब ये है कि सहज, बड़ी आसानी से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे, गोप भाव प्राप्त कर लेंगे, और नियमों का पालन नहीं करना है कुछ भी, हरे कृष्ण का जो है 16 माला जाप नहीं करना है, इसमें मन नहीं लगता है, माला जप करने में मन नहीं लगता है ना। तो वो कहते हैं कि भाई माला जप क्यों करें, ये जो है एक बंधन, हम नहीं चाहते हैं, हमें तो प्रेम, जब हमारा प्रेम होता है तो हम हरे कृष्ण बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो जब प्रेम हो तो फिर हरे कृष्ण बोलो, जब अच्छा मूड होता है तो हमें हरे कृष्ण बोलना चाहिए, खराब मूड होता है तो हरे कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, है ना, अच्छे भाव से बोलो, जब भाव अच्छा हो तो। लेकिन विधि नहीं है ये, विधि ये है कि आप की जो है इच्छा है सुनने की या इच्छा नहीं है सुनने की, आप सुनिए। सुनना उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कि एक बच्चा है तो वो स्कूल में नहीं जाना चाहता, उसके माता पिता उसको भेजते हैं स्कूल में, उसकी इच्छा नहीं है, तो हमेशा सुनने की इच्छा नहीं होती है, है? और सुनने से अपनी पोजीशन खराब होती है, आप आपकी इज्जत घटती है, आप सुनते हैं तो आपकी इज्जत घटती है ना, तो मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सुनूं, ये तो जो है मुझसे जूनियर है ना, मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, मैं तो जो है 10 साल से 20 साल से डीटी वर्शिप कर रहा हूँ, और ये तो अभी 1 साल से आया है, ये कौन होता है सुनाने वाला, ये क्यों व्यासंस पर बैठा हुआ है, मैं तो कभी व्यासंस पर नहीं बैठता, और ये क्यों बैठा है, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सुनूं, मैं सब जानता हूँ, तुमने क्या जाना है, मैंने सब जान लिया और सब उसको भूल भी भूल चुका हूँ सब करके छोड़ दिया मैंने, ये सब करके छोड़ दिया सब करके छोड़ दिया मैंने, क्या समझते हो ये तो किया ही नहीं तुमने, तुम कहते छोड़ दिया, जो करता है वो कभी छोड़ता नहीं, तुमने किया ही नहीं कुछ, मैं सब जान लिया सब भूल भी गया, तो जाने क्या तुम, जो जानता है एक बार वो कभी भूलता नहीं है। एवं जो वेति तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं जो वेति तत्वतः, जो तत्व से जान लेता है मेरे जन्म कर्म को, तो फिर देह त्याग देता है, लेकिन वो उसका ये ज्ञान नहीं भूलता, उसको त्यक्त्वा देहम, जो तत्व से जान लिया तो शरीर भी वो छोड़ देगा लेकिन इस ज्ञान को नहीं छोड़ेगा, शरीर छूट जाए लेकिन ज्ञान नहीं छूटता उसका, अभी तो ये हाल है, कुछ भी थोड़ा सा भी तबीयत खराब होती है तो हरे कृष्ण का जाप छूट जाता है, सबसे पहले जाप ही छूटता है हरे कृष्ण का, फिर क्लास में बैठने के लिए बड़ा अच्छा कारण बन जाता है कि अब तो तबीयत ठीक नहीं, अब तो नहीं, अब नहीं बैठेंगे क्लास, लेकिन जो बीमार है तो भी वो सोचता है कि मैं क्लास में नहीं बैठा, मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, मैं क्लास में नहीं बैठ रहा हूँ, और वहाँ कितना अमृत निकल रहा है, जो वक्ता है उसके मुख से कितना अमृत निकल रहा है, और मैं उसको नहीं पी पाया और ये लोग पी रहे हैं, मेरा तो इतना नुकसान हो गया, वही सोचता है, उसका लोभ बढ़ता है, उसको सुनने का लोभ बढ़ता है, है ना। जिसको एक बार चस्का मिल गया तो फिर वो छोड़ता नहीं है, है ना। लेकिन तुमने सब करके छोड़ दिया, तुमने किया क्या, संभव नहीं कि तुमने कुछ किया और फिर छोड़ दिया, किया ही नहीं तुमने कुछ, है ना। तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, मैं सब सीख चुका हूँ, सब सीख करके मैं सब उसको छोड़ चुका हूँ, है ना, सब, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जिन्होंने अपनी नींव अच्छी तरह से नहीं बनाई है, हैं और मकान जो है बहुत बढ़िया बनाया है, हैं तो जितनी आसानी से वो बनाते हैं मकान, खूब ऊंचा मकान बनाते हैं, उतनी आसानी से गिर भी जाता है। और जितनी ऊंचाई पर आप जाते हैं उतनी ऊंचाई से आप गिरेंगे भी नीचे और चोट भी लगेगी। आप नीचे नहीं जाते, नियम नहीं बनाते हैं, है ना। नीचे यहाँ क्लास में सुनने के लिए आपको नीचे बैठना पड़ता है ना, नीचे बैठना पड़ता है, तो ये नींव बनाने की बात है ना। तो मैं नीचे क्यों बैठूँ, मैं तो हमेशा ऊपर बैठूँगा, है ना। और क्लास क्यों सुनूँ, क्लास में क्यों सुनूँ, अरे क्लास में अगर बैठना भी है तो अच्छा है कि वो जो है सोना भी हो जाएगा मेरा और क्लास में बैठने का भी नियम हो जाएगा पूरा, अच्छा है। उस समय जो है मेरा सोना भी हो जाएगा, मुझे सुनना भी नहीं पड़ेगा, और क्लास में बैठने का नियम भी हो जाएगा, मेरी अटेंडेंस भी लग जाएगी क्लास में, तो प्रसादम के लिए कूपन भी मिल जाएगा अटेंडेंस भी लग जाएगी, प्रसादम का कूपन भी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर यही नियम बनाएंगे क्लास में बैठने से ही प्रसादम मिलता है तो अच्छा है, क्लास में बैठ करके अपनी हाजिरी भी दे दो, है ना, और सुनना भी ना पड़े, सुनने का कष्ट भी ना उठाना पड़े, है ना, कि मैंने सुना, क्योंकि फिर ये बात हो जाएगी कि भाई मैंने इनसे सुना, हाँ तो मैं इनसे छोटा हूँ, इसलिए अच्छा यही है कि मैं ना सुनूँ। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्णदास कविराज कहते हैं सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, फिर चरणों की वंदना कर रहा हूँ, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं आप सब श्रोताओं के चरणों की मैं वंदना कर रहा हूँ, है ना। हमको लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि कृष्णदास कविराज ऐसा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं, तो उनको चरणों की वंदना करनी पड़ रही है, जबकि हमारे आचार्य के आचार्य के आचार्य कितने ऊपर के आचार्य हैं ये, तो बड़ी लज्जा की बात है कि उनको ऐसा कहना पड़ रहा है ना। प्रभुपाद के गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, कितने गुरु परंपरा में कितने ऊपर हैं कृष्णदास कविराज, आप गिन सकते हैं कितनी ऊपर की पीढ़ी में है कृष्णदास कविराज। वे बोल रहे हैं कि आपके चरणों की वंदना करता हूँ, कि सुनो ध्यान से, हरि बोल, सुन रहे हो, नहीं सुन रहे, कुछ नहीं सुन रहे, ये भी नहीं सुन रहे। कृष्णदास कविराज आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं कि सुनो सुनो, वो भी नहीं सुन रहे, वो भी नहीं सुन रहे, ये हाल है। अगर नींद आए क्लास में तो क्या करना चाहिए, अमोघ लीला प्रभु,
पानी पी सकते हैं
प्रभु जी बता रहे हैं पानी पी सकते हैं, मतलब आपको अपनी तरफ से ही सोचना चाहिए, है ना, कि अगर नींद आ रही है तो मैं पानी पी लूं, और खड़े हो सकते हैं साइड में, हाँ वहां मत खड़े हुए, क्योंकि कोई पीछे है, है? कोई पीछे बैठा हुआ है तो आप ऐसे खड़े होइए कि आपके पीछे कोई ना हो, ऐसे जगह खड़े होइए, है ना। लेकिन दीवार से भी सर करके मत खड़े हो कि उसमें नींद आ जाएगी, है कि पीछे खड़े हो गए खंभे का सहारा लेकर खड़े हो गए फिर उसमें भी सो रहे हैं, सोने का आनंद ले रहे हैं, है ना। और क्या करना चाहिए, शीतल चीनी, क्योंकि मैंने भी जो है इस समस्या से जो है जूझने के लिए बहुत दिमाग लगाया था, तो वैद्य से पूछा, फिर किसी और वैद्य से पूछा, तो उनका शीतल चीनी जो है खाओ, तो मुंह में अगर आप शीतल चीनी डाल देते हैं, चबाते हैं, तो उससे कई बार सहायता मिलती है, तो अपनी जेब में रखता हूँ मैं शीतल चीनी, अगर नींद आए क्लास में तो मुंह में डाल लो चबाओ, तो उससे नींद नहीं आएगी, तो ये भी विधि है। और प्रभुपाद ने बहुत कठोर शब्द बोले थे, कृष्णदास कविराज तो बोले कि चरणों की वंदना करता हूँ मैं, तो प्रभुपाद ने जो है कितने कठोर शब्द बोले थे, ये जो है प्रभुपाद के शब्द हैं। जब गोरखपुर में प्रवचन दे रहे थे प्रभुपाद, तो 22 फरवरी 1971 क्षमा करना 12 फरवरी 1971 की ये घटना है, प्रभुपाद ने प्रवचन में ही बोला, क्या बोला, हिंदी में बता दूं, ये तो इंग्लिश में है शब्द है, अगर कोई व्यक्ति सोता है तो मुझे बहुत कष्ट मिलता है, अगर कोई व्यक्ति सोता है तो मुझे बहुत कष्ट मिलता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जाओ और सो जाओ, मैं साफ कहता हूं, इससे मुझे बहुत बाधा पड़ती है, कि जब मैं बोलता हूं और कोई व्यक्ति जो है सो रहा है, ज्यादा अच्छा है कि ना बैठो और 24 घंटे सो, परंतु दिखावा मत करो यहां कि मैं यहां पर बैठा हूं और सो रहे हूं। इससे मुझे बहुत बाधा पड़ती है, ज्यादा अच्छा है कि सीधे जाकर के सो जाओ। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? आपने पूरी नींद नहीं ली है। यदि आपकी पर्याप्त नींद नहीं हुई है तो इसको और बढ़ाओ, इसको 8 घंटा करो, परंतु पर्याप्त सो। अगर 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं है तो इसको 13-14 घंटे करो, परंतु इस प्रकार से मत सो। प्रभुपाद कह रहे हैं 24 घंटे सो लेकिन क्लास में मत सो, 24 घंटे सो मत लेकिन क्लास में मत सो। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि क्लास में अगर सोते हैं तो उससे भी फायदा है, ये भी है एक विचार है कि क्लास में अगर सोते हैं तो क्लास तो मतलब क्लास में ना बैठने से अच्छा तो है कि क्लास में बैठ करके सोएं। क्या विचार है? कोई क्लास में बैठ करके सोता है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि क्लास में नहीं बैठा है और क्लास में बैठ के सो रहा है? क्या विचार है? सही नहीं है क्यों?
सामने जो बैठे हुए हैं उनको उनका तिरस्कार भी है।
हाँ, लेकिन फायदा है, फायदा तो है, लेकिन इसमें अपराध भी है, बहुत ज़्यादा अपराध ज़्यादा है। फायदा तो है, आप क्लास में बैठ करके सोते हैं इसमें फायदा है, लेकिन साथ साथ जो अपराध होता है वो ज़्यादा अपराध है। आप सुन रहे हैं, इसलिए क्लास में ना बैठो। तो ये मतलब समझना है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी, अच्छा पहले सचिवपति हैं, बोलिए।
जैसे हमारे सेंटर में एक माता जी आती है, हमेशा अलाइव रहती है, कीर्तन में हमेशा अलाइव रहती है, बॉडी में भी सब साधन स्ट्रेस है, लेकिन मैं जाने का कारण जैसे क्लास में बैठी क्लास में बैठती है तो उनको इतनी तैयारी नहीं करती है और एकदम निद्रा में डूब करके सो जाती है, फिर जब आते हैं फिर सो जाती है, तो ये कुछ स्पेसिफिक ऐसा है कि
देखिए क्लास में नींद आती है तो ये अच्छा लक्षण भी है। क्लास में नींद आना एक अच्छा लक्षण है। ये कृष्ण कथा का एक गुण है कि आपके दिमाग का जो तनाव है वो दूर कर देती है। आपके दिमाग में तनाव है जिससे आपको नींद नहीं आती, आप समझे ये क्या है, एक गुण है कृष्ण कथा का कि आपके दिमाग के तनाव को दूर करती है ना, तो लोगों को नींद नहीं आती है, तो ये तनाव को दूर करती है तो आपको नींद आती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे क्लास में नींद आती है और वैसे मैं सोता हूँ तो नींद नहीं आ रही और मैं दिन भर कोशिश कर रहा सोने की कि मुझे क्लास में नींद आए, तो क्लास में नींद आई जबकि दिन भर मुझे नींद नहीं आई, है ना। तो ऐसा कई बार होता है। तो कथा का भी एक गुण है कि हरिओम, कथा का भी एक गुण है कि ये नींद आती है, लेकिन इसमें क्या है कि नुकसान यही है कि फिर आप कथा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि वैसे क्या है कि एक भक्त हैं जिनकी दीक्षा हो गई, दीक्षा का नाम याद नहीं आ रहा, गिरीश जी जमुना पार से आते थे तो मंगल आरती में आते थे और फिर उसके बाद फिर अपने ऑफिस में जाते थे और काम करते थे, क्लास में नहीं बैठते थे लेकिन बाकी और काम में लगे रहते थे और जो है शायद 3-4 घंटे सोते थे दिन में। तो मैंने पूछा आपको जो है कोई बाधा नहीं पड़ रही? मैंने कोई मुझे कोई बाधा नहीं पड़ रही, लेकिन फिर अचानक उनको ऐसी बाधा पड़ी कि कुछ दिमाग में कुछ हुआ, कुछ स्ट्रोक हुआ और फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, फिर डॉक्टर ने दिमाग का जो है कुछ रोग देखा कि रोग हो गया दिमाग में और फिर उनसे कहा कि अब आपको 8 घंटे रेस्ट करना है, दवाई भी लेनी, अब जीवन भर के लिए उनको दवाई भी लेनी है, 8 घंटे रेस्ट भी करना है ना, हाँ मिड डे मील में है ना, तो वो हो गया उनका। लेकिन अगर क्लास में बैठते हैं और क्लास में अगर नींद आती है तो वो नींद जो है जो आप नहीं सोए, आपने आप जो है सोना नहीं चाहते हैं और आप जो है निद्रा का त्याग कर रहे हैं, आप जागने की कोशिश कर रहे हैं और जो कथा है अगर आपको सुना रही है तो आपके शरीर की रक्षा कर रही है, आपके दिमाग की रक्षा कर रही है, ये भी है ना। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आप जो है क्लास में ना सोएं, आप कोशिश ये करें कि क्लास में नींद ना आए, आप दूसरे तरीके से आप सुनने की कोशिश करें तो ये भी है। और कोई? हाँ जी, हाँ। वो हैंड माइक है, हैंड माइक दे।
जैसे कि आपने बताया लेक्चर में भी जो भगवान को जो तत्व सिद्धांत को महत्व देना है, उसको गहराई से समझना है। जैसे श्रीमद् भागवतों में हम देखते हैं जैसे दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, पांचवा स्कंद और नौवा स्कंद, इसमें विशेष रूप से अलग अलग विषय हैं, जैसे कि सृष्टि की रचना क्रिएशन के ऊपर आता है, और पांचवें स्कंद में द्वीप आते हैं जम्बू द्वीप और अलग अलग प्रकाश है। तो जब ये टॉपिक्स पढ़ने बैठते हैं तो जैसे श्रवण की बात यहाँ पे हो रही है तो वो टॉपिक में भी अगर तो नींद आ जाती है, नहीं तो उसको पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो हम कैसे फिर ये जो वाक्य बताया कि सिद्धांत को जो हमें समझना है, इसमें हमें किसी प्रकार का आलस नहीं करना और इसके अंदर जाना है, कैसे हम ये सब्जेक्ट को पढ़ने वाले इसको अपने जीवन में इंटरेस्टेड बना सकते हैं और कैसे रेगुलर पढ़ सकते हैं?
नहीं, इसके लिए क्या है कि अच्छी तरह से हमें जप करना चाहिए, क्योंकि जब आप जप करते हैं तब आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा होती है, रुचि पैदा होती है इस विषय को जानने की। हैं, इसलिए प्रभुपाद ने जप करने का जो नियम है ये बहुत मतलब कठोर बनाया है, बहुत आवश्यक बनाया है कि आप जप करिए, हैं, और जप करिए और बड़ी एकाग्रता से आप जप करिए कि आपके कानों में ये शब्द जाएं। तो जब आपके कानों में शब्द जाते हैं तो आपकी चेतना पवित्र होती है, जब चेतना पवित्र होती है तो फिर इन विषयों में जानने की आपकी रुचि पैदा होगी, इन विषयों को जानने की आपकी रुचि पैदा होगी, हम कौन हैं, है ना, ये जगत क्या है, हैं भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इस भौतिक संसार में हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं। तो गीता का जो विषय है उसको जानने में आपकी फिर कुछ जिज्ञासा होगी, आपकी रुचि पैदा होगी। हैं, प्रभुपाद ने तात्पर्य इसी प्रकार से दिए हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य इस प्रकार से हैं, हैं कि व्यक्ति जो है हर तात्पर्य में उसको ये प्रकाश मिलता है, इस प्रकार का प्रकाश मिलता है। तो सिद्धांत की बातें तो प्रभुपाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा तात्पर्यों में सिद्धांत की चर्चा करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो हैं। लेकिन यही है कि साथ साथ ये है कि हम अगर सवेरे शाम क्लास में बैठते हैं और सिद्धांत की चर्चा जिसमें होती है तो फिर इसके ऊपर जरूरी नहीं कि आप फिर सिद्धांत में ही जाएँ, क्योंकि सिद्धांत की गहराई में भी मन ज़्यादा मतलब नहीं लगता है और आपको कुछ नया चाहिए है, कुछ वैरायटीज चाहिए हैं, तो इसकी अनेक कथाएँ हैं जिसमें बहुत सी वैरायटीज हैं और बहुत इसमें मनोरंजन भी होता है कृष्ण की कथाओं में, और नई नई कथाएं भी हैं, नई नई लीलाएं भी हैं, बहुत सी लीलाएं हैं जो आपने नहीं सुनी, नहीं नहीं पढ़ी हैं। तो प्रभुपाद इसके लिए भी प्रोत्साहन देते हैं कि आप इनके लिए भी समय निकालिए, इनको भी सुनिए। लेकिन सवेरे शाम का जो क्लास है वो अपने आप में बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर अगर आप और चाहें तो और नई नई लीलाएँ कृष्ण की सुन सकते हैं और अद्भुत लीलाएँ हैं। महाभारत में भी जो है कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, और कृष्ण की ही लीलाएं हैं वो, तो उनमें से निकाला जा सकता है। अच्छा, आपका तो पहले आप क्या बंद कर दिया था? जोर से बोलो ना।
हाँ, तो हम देखते हैं और फिर उसके बाद में ऊपर ऑब्स्टेकल्स की वजह से नींद का होता है कि शरीर के तरफ से कष्ट आते हैं या और माइंड से कुछ कष्ट आते हैं, तो ऐसे में फिर जो निष्ठा का स्तर है वो किस प्रकार प्राप्त होगा? जैसे हम लोग अगर डे नाइट के अगर आते हैं रेस्ट करते हैं फिर मॉर्निंग में अगर मंदिर आने छूटता है तो भजन क्रिया का अगर देखा जाए कि रेगुलरिटी मेंटेन करना अगर बोले वो किस प्रकार से है कि अगर हम लोग
देखिए इस विषय में पहली बात तो यह है कि प्रभुपाद ने जो आपकी 16 माला जप करना है वो बहुत मतलब ये आवश्यक नियम बताया, और इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप किस समय करें, किसी भी समय करें आपको 16 माला पूरा करना है, तो एक तो बहुत आवश्यक नियम है। दूसरे प्रभुपाद ने मंगल आरती का नियम बनाया, मंगल आरती भी कभी कभी नहीं हो पाती है, अब जैसे मेरी हो रही है वो तो मतलब कृष्ण की कृपा से हो रही है कि मतलब मेरा रक्षा हो रही है मेरे नियम की, लेकिन ये भी सबके लिए नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता है तो प्रभुपाद ने फिर एक ये भी नियम बताया है कि अगर आप मंगल आरती में नहीं आए तो एक कृष्ण पुस्तक बेचो और सवेरे का प्रसाद आप त्याग करो। तो अगर इस तरह से अगर आप मतलब करें तो फिर आपकी जो है मतलब उन्नति होगी। तो कुछ मतलब एक बार महाराज गोपाल कृष्ण महाराज भी बता रहे थे मीटिंग में कि वो खुद ऐसा करते हैं। बहुत साल पहले मीटिंग हुई थी तो मंगल आरती के लिए जब चर्चा हुई थी तो महाराज ने खुद कहा था। अभी तो मैं नहीं जानता है उनकी स्थिति कैसी है, उन्होंने उस समय ही कहा था कि अगर मैं मंगल आरती में नहीं आया, कोई भी कारण हो कि मैं देर से रात में आया, मैं ठीक से सो नहीं पाया या बीमारी के कारण, कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, मैं मंगल आरती में नहीं आया तो मैं सवेरे का प्रसाद नहीं लेता। फिर उन्होंने ऐसा कहा, अपने लिए कहा था ऐसा। तो ये बात जो है मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मीटिंग में ये बात कही थी, है ना। तो कुछ होना चाहिए ऐसी चेतना, ऐसी भावना कि मैं मंगल आरती में नहीं आया तो मुझे कुछ अपने को दंड देना है, कुछ इसके लिए त्याग करना है, कुछ भावना होनी चाहिए, है ना। और हाँ ठीक है, आप बोलिए। बहुत देर लगती है चालू करने में।
जैसे आपने मतलब थोड़ा भाई प्रश्न है इससे थोड़ा सा, जैसे आपने बताया कि बिल्डिंग का उदाहरण दिया, बताया कि खुद विकसित हो जाते हैं, जैसे किसी के प्रति निजी अपने जीवन से जुड़ के बताया कि कुछ साल बिताने के बाद ये होता है कि लगता है कि बहुत आगे बढ़ गया, पर नींव जो होती है कच्ची होती है, पैसे पीछे गिरते हैं। तो फिर अगर बिल्डिंग एक बार बन जाती है तो उसकी नींव तो पार होती है, तो हम भक्ति के रूप में इस नींव को बनाने के लिए उसको क्या अर्थ क्या हो सकता है।
हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। अगर जो है बिल्डिंग बन गई तो नींव तो दोबारा नहीं बन सकती, लेकिन यहाँ पर आप नींव बना सकते हैं अपनी दोबारा। इनके कहने का मतलब अच्छा है कि स्थिति ये हो जाती है ना कि इतनी बिल्डिंग बन गई तो इतना अहंकार हमारा बढ़ गया, अब मैं नीचे कैसे बैठूँ, अब मैं नीचे कैसे बनूँ। एक ये बहुत बड़ी बाधा आती है कि इतने सालों से मैं हूँ और मेरी बड़ी इज्जत हो गई और मैं इतना सीनियर हो गया हूँ, अब मैं कैसे नीचे बैठूँगा इनकी तरह। तो एक इस तरह का भाव बन जाता है। लेकिन चूंकि वैष्णवों का समाज है और वैष्णवों के समाज में कोई भी मतलब ऐसा दोष नहीं माना जाता है, कोई बड़े से बड़े प्रभुपाद कहते हैं मैं खुद बैठता हूँ क्लास में, है ना। देखिए इसी में ही जो है इसी पत्र में मतलब दूसरी तरफ जो प्रभुपाद ने लिखा है तो वो दूसरी बात भी प्रभुपाद ने बोली है। प्रभुपाद कहते हैं ये मेरे सभी शिष्यों का कर्तव्य है, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। वास्तव में हमारे आंदोलन में कोई ऐसी चीज़ छोटे और बड़े की नहीं है, हर कोई भक्त है। इसलिए प्रत्येक से आशा की जाती है कि भक्ति के का अभ्यास करें। यहाँ वृंदावन में मैं आनंद लेता हूँ कि मेरे शिष्य किस प्रकार से बोल रहे हैं। प्रभुपाद मैं आनंद लेता हूँ, प्रभुपाद कहते हैं ये मेरे लिए कोई कष्ट की बात नहीं कि मैं अपने शिष्यों का प्रवचन सुन रहा हूँ तो मेरे लिए कोई कष्ट की बात हो। प्रभुपाद कहते हैं मैं आनंद लेता हूँ कि मेरे शिष्य किस प्रकार से बोलते हैं। इसलिए दो बार रोज प्रत्येक व्यक्ति को क्लास अटेंड करनी है, सवेरे और शाम के समय कोई दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए, केवल कीर्तन है और नृत्य है और शुद्धिकरण करना है। परमहंस मत बनिए कि अब मुझे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता सुनने की आवश्यकता नहीं, मैं परमहंस बन गया हूँ। तो वही है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई तो वो एक भाव, गलत भाव पैदा हो गया ना, अहंकार कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ अब मैं कैसे बैठूँ नीचे। तो प्रभुपाद परमहंस मत बनिए कि अब आप आपको अब श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता सुनने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि अपने गुरु महाराज से बड़े परमहंस मत बनिए। अपने गुरु महाराज से बड़े परमहंस मत बनिए। मैं खुद जाता हूँ और मैं बैठता हूँ और मैं आनंद लेता हूँ। मैं आनंद लेता हूँ प्रवचन का, तो जिस प्रकार से मैं करता हूँ आपको भी वैसे ही करना है। ये गोपीचंद वल्लभ को पत्र लिखा प्रभुपाद ने 9 सितंबर 1974 को। लेकिन ये एक व्यक्ति को जो पत्र लिखा है प्रभुपाद ने, इसका ये मतलब नहीं कि ये शिक्षा एक व्यक्ति के लिए है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा है, है ना। तो आप स्वयं इसके उदाहरण बनिए कि आप जब सीनियर हो जाएं, आप बड़े भक्त बन जाएं, आप दूसरों को भक्त बनाएंगे, है ना, तो फिर ये नहीं करना कि भी वो भक्त बैठेंगे मैं नहीं बैठूंगा क्लास में, है ना। तो आप स्वयं जो है उदाहरण बनिए, इससे उन्नति होगी, है ना। सबको बैठाइए सुनने के लिए, तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है। इसका जो महत्व है वो आप खुद समझिए, लोगों को समझाइए और व्यवहारिक रूप से समझाइए, ठीक है ना। और कोई धन्यवाद आपको।
परमहंस वैष्णव का ही गुण है कि वो कृष्ण कथा सुने।
परमहंस की स्थिति अलग भी होती है। अब वे कभी मान लो अगर ना भी सुने और वो इतना मतलब उसमें डूबे हुए हैं तो उनको कुछ होश, अपने शरीर का भी होश नहीं। माधवेंद्रपुरी ऐसे थे, उनको अपने शरीर का भी होश नहीं था, है ना। और वो मूर्छित हो जाते थे, बादल को देख करके मूर्छित हो जाते थे। तो परमहंस ऐसे भी होते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद भी परमहंस हैं, लेकिन वे जो है उतर के आते हैं मध्यम अधिकारी के धरातल पर प्रचार के लिए। हाँ, तो उत्तम अधिकारी से भी मध्यम अधिकारी धरातल पर उतर कर आते हैं क्योंकि प्रचार करना है उनको। हाँ, तो वो स्वयं इन नियमों का पालन, प्रभुपाद को जप करने की क्या आवश्यकता है, माला पर भी जप करते हैं प्रभुपाद, हैं क्लास में भी बैठते हैं प्रभुपाद। तो परमहंस की स्थिति में हम कुछ नहीं कह सकते, वो क्या करें क्या ना करें, उनके ऊपर कोई नियम नहीं है, उनके ऊपर कोई शासन नहीं है, शास्त्रों का भी कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है। लेकिन वो अगर करते हैं अपनी इच्छा से तो भी जो है कभी आदर्श की स्थापना के लिए करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं परमहंस हूँ और मैं जब बैठता हूँ क्लास में तो तुम जो है मुझसे बड़े परमहंस मत बनो, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि मुझसे बड़े परमहंस मत बनो, है ना, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। गौरताई की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय हो।
हरे कृष्णा। तो जीता जो जी की ये बुक श्री भगवान ने कहा ये न्यू रिलीज है सीरीज में, तो इसमें प्रभु जी ने फोर्थ चैप्टर कवर किया है, कंप्लीट कर दिया फोर्थ चैप्टर, है ना।
हाँ,
तो फोर्थ चैप्टर प्रभु जीता का इसमें कंप्लीट कर दिया प्रभु जी ने, तो यहाँ आके ले सकते हैं। प्रभु जी अपने हस्ताक्षर के द्वारा इसका आशीर्वाद भी देंगे। हरे कृष्णा।
छोटी सी सेवा है, 70 रुपये।
हाँ, आप 10 लोग हैं।